मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 21 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सबसे भाषा की शक्ति पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। कल मुझे कुछ मेल मिले हैं, उसमें आप लोगों ने भाषा को लेकर अपनी समस्याओं का अलग अलग तरीके से जिक्र किया है और मुझे उन मेल्स को पढ़ने के बाद सच में यह लगा कि शायद अनजाने ही सही लेकिन एक अच्छे विषय पर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। और अच्छे विषय पर इसलिए कि यह बहुत ही व्यावहारिक है और उससे भी बड़ी बात यह कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सब में से बहुतों ने भाषा संबंधी अपने अलग अलग तरह की समस्याओं की ओर मेरा ध्यान खींचा है। अब देखिए, एक एक समस्या को लेकर बातचीत कर पाना तो उतना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी मैं इस विषय पर बात करता हूं या अब जबकि कर रहा हूं, मान करके चलिए कि आप लोगों ने जो इनपुट मुझे दिए हैं वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हैं और मेरी बातचीत के माध्यम से उनके समाधान भी शायद आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, भले ही यह सब कुछ अनजाने में ही क्यों न हो। मित्रों, सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है मुझे लगता है कि और आज के एजुकेशन सिस्टम की, और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे फैमिली एजुकेशन की भी, फैमिली एजुकेशन इस मायने में कि परिवार हमें जिस तरीके से शिक्षित कर रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या भाषा की समस्या को लेकर है। घर में हम कोई भाषा बोल रहे हैं, एजुकेशन के रूप में हमारे पास कोई अन्य भाषा है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तब हम कोई अन्य भाषा बोल रहे होते हैं और कुल मिलाकर ऐसी एक खिचड़ी भाषा के हम वारिश होते चले जा रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन तो है, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा तो ले रहे हैं लेकिन प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, जबकि भाषा अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली दोस्तों वेपन है। मैं इसे हथियार भी कहूंगा और मैं इसे औजार भी कहूंगा। औजार का मतलब उपकरण जिससे आप रचनात्मक काम करते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट। और हथियार इस मायने में कि आप सामने वाले पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भाषा के प्रति यह दृष्टिकोण धीरे धीरे पारिवारिक स्तर पर भी खत्म होता चला जा रहा है और दुर्भाग्य से शैक्षणिक स्तर पर भी। मित्रों, हो सकता है कि मैं जब इस तरह की अपने समय की बात करता हूं तो आप सब मुझे अतीत मोह से ग्रसित एक फालतू के व्यक्ति के रूप में देखने लगे कि ये तो अपने युग की बात करते हैं जैसे कि वह युग बहुत बेहतर युग था और आज की आलोचना करते हैं। नहीं, मैं आज की बिल्कुल आलोचना नहीं करता। आज का युग कई मायनों में हम लोगों के समय की तुलना में बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसकी कमी हम लोगों को साफ तौर पर दिखाई देती है, जिसमें से एक है भाषा। मैं गांव में पढ़ता था इसलिए कह रहा हूं कि गांव में पढ़ाने वाले टीचर्स किस तरीके के होते होंगे, वहां भाषा को लेकर के कितनी संवेदनशीलता होती होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारे टीचर थे, पता नहीं सभी गांव के शिक्षक उसी तरह से थे या सौभाग्य से हम लोगों को ऐसे शिक्षक मिल गए थे जो भाषा के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील थे। मतलब बाकायदे कहा जाता था कि आप घर से कुछ लिख कर लाएंगे और उन्हें जांचा जाता था, उन्हें सुधारा जाता था, सुधार करके वो कॉपी आपको थमा दी जाती थी और कॉपी को देखने के बाद फिर आप खुद देखिए, खुद अनुमान लगाइए कि किस शब्द की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, आपके लिखने में वर्तनी संबंधी कहां गलती हुई है। और मुझे मालूम है कि उस समय आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय के लोगों की भाषा आज के लोगों की भाषा की तुलना में बेहतर ही थी। ये बात अलग है कि आज के लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं तुलनात्मक दृष्टि से उस समय के लोगों से। इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सा है कि वो भाषा पर काम करते थे, भाषा पर मेहनत करते थे। आज हम भाषा पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप खुद अपने बारे में सोच करके देखिए कि इससे सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या भाषा को लेकर कभी आपके मन में कोई चिंता पैदा हुई कि यार मुझे अपनी भाषा अच्छी करनी चाहिए। देखिए, अंग्रेजी के बारे में यह चिंता जरूर होती है क्योंकि आपको लगता है कि अगर गलत अंग्रेजी बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इसको अंग्रेजी नहीं आती है। और खासकर कपिल शर्मा के शो में आप देखते हैं कि कभी कभी कपिल शर्मा जी की अंग्रेजी को लेकर के इस तरीके से कभी कभी व्यंग दिखाई दे जाते हैं, तो आप उस व्यंग वाण से अपने को बचाना चाहते हैं, तो अंग्रेजी के प्रति थोड़ी सी कोशिश आपकी दिखती है। और मैंने यह महसूस किया है कि अंग्रेजी के प्रति भी जो कोशिश है वो बेसिकली एक फॉर्मल लैंग्वेज के लिए ज्यादा है, एक औपचारिक भाषा के लिए ज्यादा है, उसमें अनौपचारिकता दिखाई नहीं देती। यानी कि जो बड़े हृदय को छूने वाली भाषा हो, स्पर्श करने वाली भाषा हो, थोड़ी सी रसदार भाषा हो, या यूं कह लीजिए कि मुलायम भाषा हो, वो दिखाई नहीं देती। जैसे किसी आप कंपनी से आपके आपके पास फोन आ जाएगा और स्टूडेंट भी अब इस तरह से बात करने लगे हैं, क्या मेरी बात डॉक्टर विजय अग्रवाल से हो रही है? कभी इस भाषा के बारे में सोच करके देखिए, क्या मेरी बात डॉक्टर विजय अग्रवाल से हो रही है? या कुछ लोग थोड़े से सतर्क होते तो क्या मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल से बात कर रहा हूं। मतलब ये जो भाषा है, सुनते साथ ही कम से कम हम जैसे लोगों को मुझे लगता है कि खटक जाती है कि यार ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाषा का, ये कौन सा व्याकरण है। हर भाषा की अपनी एक संरचना होती है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ये तो हिंदी का स्ट्रक्चर नहीं है, अंग्रेजी के स्ट्रक्चर को आपने हिंदी के स्ट्रक्चर पर लाद दिया है। मैं हिंदी और अंग्रेजी के विभेद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर भाषा का जो अपना स्वरूप होता है, अपनी जो लय होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो हो क्या रहा है कि स्ट्रक्चर इंग्लिश का आ गया है, राइट? भाषा आप हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो भाषा तो लड़खड़ाती हुई भाषा हो ही जाएगी। आप सोच करके देखिए कि क्या कभी आपने अपनी भाषा के बारे में कभी यह विचार किया कि यार मेरी भाषा अच्छी नहीं है, थोड़ी सी लंगड़ी भाषा है, इसको मुझे अच्छा करना है। क्या कभी आपके दिमाग में ये थॉट आया? बावजूद इसके कि जब आपके सामने कोई अच्छी भाषा बोलता है, आप अच्छी भाषा सुनते हैं, तो आप उसकी तारीफ करते हैं, और फिल्मों में जब कोई बहुत अच्छे डायलॉग्स आ जाते हैं तो आप वाह वाह कह उठते हैं और तालियां बजाते हैं, और शेर व शायरी में जब कभी आपको इस तरह का अंदाज सुनाई पड़ जाता है तब भी आपका मन मचल उठता है। यानी कि अच्छी भाषा के प्रभाव को आप महसूस तो करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी कमी को महसूस नहीं करते। तो दोस्तों, भाषा बेहतर हो उसकी शुरुआत तो कमी को महसूस करने से होगी। चलिए, आपने कभी कभार कमी भी महसूस कर ली होगी, अगर कमी महसूस की तो फिर आपने उसे बेहतर बनाने के लिए क्या किया? सच पूछिए तो ज्यादातर लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि भाषा को भी बेहतर बनाया जाना चाहिए, सोच ही नहीं पाते, या कह लीजिए कि बनाया जा सकता है, शायद यही विचार उनके मन में नहीं आता। वो मान करके चलते हैं कि भाषा तो एक ऐसी चीज है जो हमें परिवार से मिल गई है, थोड़ी बहुत जो जरूरत थी वो हमारे स्कूल और कॉलेज से पूरी हो गई है, तो अब तो हम भाषाविद हो ही चुके हैं, तो अब अपनी भाषा को बेहतर बनाने के लिए बेवजह समय क्यों लगाना? हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। वैसे ही आज का आदमी तो इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका है कि वो रेड लाइट को ग्रीन में बदलने तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वो रेड लाइट के आखिरी छोर पर ही अपनी शुरुआत कर देता है कि जल्दी से पहुंचो, कहां पहुंचो नहीं मालूम, लेकिन वो जल्दबाजी में बहुत है। तो ऐसी स्थिति में भाषा जैसी चीज के लिए कौन अपना समय लगाएगा, कौन अपना समय खपाएगा? तो सीधी सी बात है कि जब हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो मिलेगा कैसे? देखिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए मित्रों कि जो भाषा है वो एक्वायर किया गया गुण है, ये आपको हासिल करना पड़ता है, कोई आपको दे नहीं देता। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूं पारिवारिक स्तर पर हमें एक लेवल की भाषा मिल जाती है, है ना, अगर परिवार पढ़ा लिखा है या साहित्यिक पृष्ठभूमि का है या भाषा के प्रति संवेदनशील है, तो वो सुनते सुनते आपकी जो भाषा आई है वो डेफिनेटली दूसरों की तुलना में एक बेहतर भाषा होगी। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते भी हैं कि जब अपने बच्चों को बोलता हुआ सुनते हैं और वो गलत बोल रहे हैं तो वो करेक्ट करते हैं, अगर वो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका उच्चारण गलत कर रहे हैं तो पेरेंट्स टोक देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोला जाना चाहिए, ये शब्द नहीं, ये शब्द बोला जाना चाहिए। तो नो डाउट उनकी भाषा थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि वे भी अगर उस पर थोड़ी और मेहनत करने लगे तो वो भाषा के सरताज बन सकते हैं, भाषा के बादशाह बन सकते हैं। मित्रों, आज तो मैं भाषा के बारे में बस इतनी ही बातें करूंगा, लेकिन कल मैं जरूर आपसे भाषा के कुछ टुकड़े आपके सामने रखूंगा, उसके बारे में बातें करूंगा कि देखिए ये छोटा सा टुकड़ा है लेकिन कितने शानदार तरीके से कहा जा रहा है, शायद आपको मेरे कल का जो लाइफ मैनेजमेंट है बेहतर लगे। तो दोस्तों, अब अपनी बात मैं यहीं समाप्त करके आप सबसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।